एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। जाना
अपनों को तो अपना सब कुछ लोग देते हैं, दुश्मन पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक आपको परमेश्वर का वचन सुनाने आता हूँ। आज का मेरा संवाद का शीर्षक है अनुग्रह एक पापी को परिवर्तित करता है। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए। हम तुझे तेरे सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज मेरे श्रोताओं के संग हो, उनके मन और हृदयों को खोल दे और उन्हें मदद कर कि वे तेरे संवाद को समझ सके। मेरे संग हो, मुझ पर तेरा आत्मा उंडेल दे ताकि मैं तेरे वचन को तेरी इच्छा के अनुसार बतला सकूं। आज हम सबों को तेरे वचनों से आशीषित कर, मेरे श्रोताओं के मन को छू दे और तेरा प्रेम से भर दे। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना दया से ग्रहण कर, आमीन। आज का हमारा संवाद यूहन्ना रचित सुसमाचार का 8:1-11 आता है। संवाद का शीर्षक है अनुग्रह एक पापी को परिवर्तन करता है। यूहन्ना 8:1-11 में हम पढ़ते हैं, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, अतः तो इस स्त्री के विषय क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। यीशु ने इस स्त्री को, जिसे सब पथराव करने की आज्ञा सुनने वाले थे, यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। यहाँ पर शास्त्री और फरीसी इस स्त्री को यीशु के पास लाए थे कि यीशु उस पर अपना मत दे कि उसे क्या करना चाहिए। वे यीशु को संकट में लाने चाह रहे थे। यदि यीशु कहे कि उसे छोड़ दो तो ये शास्त्री और फरीसी, यहूदियों के धर्मगुरु, कहते कि यीशु मूसा का आज्ञा को दरकिनार करता है, या यह कहते कि वह उसको नहीं मानता है और उसका महत्व नहीं देता है। और यदि यीशु कहता कि इसे मूसा के नियम के अनुसार पथराव करो, तो वे यीशु को रोमी अधिकारियों और सरकार के सामने यह इल्जाम लगाते कि यीशु लोगों को हत्या करने की आज्ञा देता है। वे यीशु को दोनों तरफ से मुश्किल में करना चाहते थे, परंतु यीशु उनका मनसा को जानता था और यीशु उनसे अधिक बुद्धिमान है। वह ईश्वरीय ज्ञान से उनका जवाब दिया। उसने कहा, तुम में से जो निष्पाप है वह उसे पहले पत्थर मारे। लोग एक दूसरे को देखने लगे, उसमें कोई भी बिना पाप के नहीं था। पहले तो यीशु झुककर भूमि पर लिखने लगा, पर लोगों के पूछते जाने पर उन्होंने यह जवाब दिया कि जो उनमें बिना पाप का है वही पहले उसको पत्थर मारे। उनमें से कोई भी बिना पाप का नहीं था। हाँ प्यारो, हम में से कोई भी बिना पाप के नहीं है। चाहे आप बड़ा पाप किए हो या छोटा पाप किए हो, आप व्यवस्था के सामने पापी कहलाएंगे। चाहे आप सभी आज्ञाओं का उल्लंघन किए हो या एक ही आज्ञा को तोड़े हैं, आप व्यवस्था के सामने दोषी ठहरते हैं। और पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। बाइबल कहती है रोमियो 3:23 में कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यूहन्ना 1:8-10 में, पहला यूहन्ना का 1:8-10 में हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधम से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। यदि वहां पर कोई बिना पाप का था तो वह था यीशु मसीह, पर यीशु उस पर पथराव नहीं करता है। यीशु उसे क्षमा करता है। वह अपना पाप को मान ली थी और वह जानती थी कि उसके लिए मौत उचित है, पर यीशु ने उस पर दया किया। यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुझ पर दंड का आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। प्यारो, यीशु हमारे पापों को क्षमा करता है। जब हम अपने पापों को मानकर उसके पास आते हैं और यीशु चाहता है कि हम फिर पाप ना करें। यीशु के प्यार ने मरियम के हृदय को छू दिया था। वह स्त्री जो मरने वाली थी, उसे यीशु ने बचा लिया। उसका जीवन परिवर्तन हो गया, उसका जीवन बदल गया। उसके बाद वह यीशु की सच्ची शिष्य बन गई। वह यीशु का एक विश्वासी अनुयायी बनकर उसके पीछे चलने लगी। यीशु के बहुत चेले थे, उसमें से 12 उसके बहुत करीब थे, और कुछ स्त्री शिष्य भी थी जो यीशु और उसके चेलों की उनके जरूरत पर सेवकाई करती थीं। यह मरियम मगदलीनी भी उन स्त्री शिष्यों में यीशु के बहुत करीब थी जो यीशु की सेवकाई करती थी। जब मरियम का जीवन बदल गया, वह यीशु को अपना धन्यवादी दिखाना चाहती थी। यीशु ने उसमें से 7 दुष्ट आत्माओं को भी निकाला था। मरियम मगदलीनी अपने भाई लाजर के बीमार और उसके मृत्यु से जी उठने पर भी यीशु का महान शक्ति और उसका बड़ा ख्याल उस परिवार के लिए देखा था। लाजर उसका मित्र था, यीशु ने उसे मृत्यु से जिलाया था। मरियम हमेशा यीशु के पास रहना और उसके पांव पर बैठकर उससे सीखना पसंद करती थी। जब उसकी बहन यीशु और उसके साथियों को खिलाने का व्यवस्था करने और उनका पहनाई करने में व्यस्त रहती, मरियम यीशु के चरणों के पास रहकर उससे कुछ सीखती। यीशु उसके लिए क्या किया था, उसको कैसे बचाया था और एक नया जीवन दिया था, उसके लिए वह यीशु मसीह के प्रति बहुत धन्यवादी थी। उसके बाद वह यीशु को अपना धन्यवाद व्यक्त करना चाहती थी। वह इस मौके की तलाश में थी। एक बार यीशु एक फरीसी शमौन के घर भोजन करने के लिए बुलाया गया था। यीशु शमौन को कोढ़ की रोग से चंगा किया था। यीशु मसीह का जीवन इस पृथ्वी पर 33.5 साल का था। उसका सेवकाई का समय थोड़ा मिला। उसके बपतिस्मा के बाद उसे 3.5 वर्ष का सक्रिय सेवकाई का समय मिला। इसे भी लोग छोटा काटने के प्रयास में लगे रहते थे। वह अपने चेलों को बताया करता था कि मनुष्य का पुत्र यीशु को मानव के लिए मरना आवश्यक था, किंतु यह बात उसके चेलों को समझ नहीं आता। यीशु को मनुष्य जाति को बचाने के लिए अपना जीवन का बलिदान करना था। वह समय निकट आ रहा था। यीशु अपने चेलों को अपने मृत्यु के बारे बार बार बताया कर रहा था। यीशु आखिरी बार यरूशलेम की यात्रा में जा रहा था। यह फसह का पर्व का समय था। उससे पहले शमौन अपने घर में यीशु को भोज करने के लिए बुलाया था। शमौन एक फरीसी था जिसे यीशु कोढ़ से चंगा किया था। यह यीशु के यरूशलेम की आखिरी यात्रा के कुछ दिन पहले की बात है। उससे कुछ समय पहले यीशु ने अपना मित्र लाजर को मरे हुओं में से जिलाया था। इस कारण बहुत से लोग इस भोज में यरूशलेम से आए थे कि वे लाजर को भी देख सके। मरियम इस मौके को बिना छूटे इस्तेमाल करना चाहती थी। उन्होंने यीशु के द्वारा जीवन परिवर्तन के बाद कड़ी मेहनत से कुछ रकम कमाई थी। उसने 1 साल की कमाई की रकम से एक महंगी इत्र का सीसी खरीदी और वह इस इत्र से यीशु को उंडेलना चाहती थी। वह इस समय का उपयोग किया जब सब कोई जो शमौन के घर में भोज के लिए बुलाए गए थे वहाँ यीशु के आसपास बैठे हुए थे और यीशु के बातों को सुन रहे थे, तो मरियम वहाँ उस इत्र की बोतल लेकर पहुँचती है। उसे कुछ परवाह नहीं कि वहाँ कौन कौन लोग बैठे हैं या उसे क्या कह सकते हैं। उसका ध्यान तो सिर्फ यीशु पर था कि वह उस इत्र यीशु के शरीर पर उंडेले। उस कीमती इत्र को डालने में उसका ध्यान था। वहाँ के बैठे सब लोगों का ध्यान उस स्त्री पर गया और अचंभा कर रहे थे और एक दूसरे से कुछ कुछ फुसफुसाने लगे। यहूदा इस्करियोती जो यीशु को पकड़वाने वाला था वह कहने लगा कि क्यों इस पैसों का बर्बादी करना, इसे बेचकर जो पैसा आता उसे गरीबों को बांट दिया जाना चाहिए था तो उनके लिए भलाई होता। बाइबल बतलाती है यहूदा यह इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसे गरीबों का ख्याल था, परंतु इसलिए कि वह यीशु और उसके चेलों का थैला रखता था और समय समय पर वह वहां से अपने लिए इस्तेमाल करता था। वहां पर खुद शमौन बैठा था और उसे तो इस स्त्री को यीशु पर इत्र डालते देखकर बहुत असहाय लगा और वह अपने मन में सोचने लगा कि यदि यीशु जानता कि वह कैसी पापी स्त्री थी तो वह उसे अपना पैर छूने नहीं देता। पर मरियम मगदलीनी तो यह सब यीशु को अपना धन्यवादी दिखाने के लिए और अपना प्रेम दिखाने के लिए कर रही थी। मरियम उस इत्र का बोतल को फोड़ के उस इत्र को यीशु के सिर पर डाला और उसके पैरों पर डाला और उसके पैरों को अपने आंसुओं से और अपने बालों से पोंछ रही थी। यीशु जो सबके मन को जानता है शमौन से कहता है कि इसने जो किया है वह भला ही किया है, इसने मेरे मृत्यु से पहले मेरे शरीर को इत्र से मला है और मेरे मृत्यु के दिन के लिए तैयार किया है, इसके जो बहुत से पाप थे वह क्षमा किए जाते हैं क्योंकि इन्होंने ज़्यादा प्यार दिखाया है। और जहाँ कहीं भी यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा यह भी बतलाया जाएगा जो इसने अच्छा काम किया है इसके नाम के याद के लिए। बाइबल बतलाती है रोमियो 5:20 में कि जहाँ अधिक पाप हुआ वहाँ अनुग्रह भी अधिक दिखाया गया। हाँ भाइयों और बहनों, हम पाप किए थे परंतु प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए अपना जान दिया, और हम अधिक पाप किए थे तो यीशु मसीह हमारे लिए अधिक अनुग्रह भी दिखाया है। इसके बाद भी यीशु अपने पुनरुत्थान के पश्चात मरियम मगदलीनी से पहले मिलता है क्योंकि वह बहुत सुबह यीशु को खोजने आई थी यीशु के मृत्यु के बाद, और जब वह यीशु के शरीर पार्थिव शरीर को नहीं पाई तो वह वहाँ पर रो रही थी कि किसने उसके गुरु के शरीर को वहाँ से ले गया और कहाँ ले गया है। परंतु यीशु जी उठ चुका था और वहीं था और उससे मिला और मरियम उसे देखती है और कहती है रबोनी। मरियम को यीशु से मिलने का सबसे पहले सौभाग्य हुआ जब यीशु मसीह उससे जी उठा। यीशु मसीह उस पर बहुत वरदान किए और बहुत आशीष दिए क्योंकि वह पूरी रीति से बदल गई, यीशु मसीह को अपनाई और यीशु मसीह के लिए उसका मन में प्रेम से भर गया था। प्यारो, यीशु हमारे लिए भी बहुत कुछ कर सकता है यदि हम उस पर विश्वास करें। चाहे हम कितने पाप किए हों, चाहे हम कितने पापी हों, वह हमसे प्यार करता है और वह हमें क्षमा कर सकता है। यदि हम उसके पास आए, अपने पापों को मान ले, उस पर विश्वास करें, तो हमारे हरेक पापों को क्षमा कर देगा और हमें नया जीवन देगा, नया जिंदगी देगा और हम नया शुरुआत कर सकते हैं और उसके साथ चल सकते हैं और अनंत राज्य में आनंदित कर सकते हैं। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। अब उसमें विश्वास करिए और उसके पीछे चलिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए, इस सुंदर संवाद के लिए। तू हमसे अति प्रेम करता है, तू हमें बचाने के लिए तेरा बेटा प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि हम उस पर विश्वास करके अपने पापों से क्षमा पाप प्राप्त कर सकते हैं और बचाए जा सकते हैं। मेरे हरेक श्रोताओं के संग हो, उन्हें मदद कर तुझे पहचानने के लिए और हम सबों को अपने पापों को स्वीकार करने के लिए मदद कर पिता। हमें हमारे पापों से तुम मुक्ति दे, हमारे पापों को क्षमा कर और हमें नया जीवन दे और हमें मदद कर कि हम तेरे साथ चल सके। तेरा पवित्र आत्मा का आशीष दे और हमें तेरे राज के लिए तैयार कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।
आदमी जो सोचता है वो होता नहीं, यीशु जो चाहे वो होता है, वो होता है। आदमी जो सोचता है वो होता नहीं, आदमी जो सोचता है।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@advent.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।